हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जैसे ही तारा परी ने विजुअल देखने के बाद अपनी आंखें खोलीं, उसका पसीने से बुरा हाल था। उसे रह रहकर डर भी लगने लगा था, क्योंकि अब तक जितने भी विजुअल्स उसने देखे थे वे सभी सच साबित हुए थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में आग के बीच फंसे रहने का विजुअल क्या था और कैसे हो सकता था। तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वेल, जैसे ही अमन ने तारा के चेहरे की ओर देखा और उसका उड़ा हुआ रंग देखा, वो भी बहुत हैरान और परेशान हो गया। वो भागकर तारा के पास गया। वो गिफ्ट सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि उस वक्त तारा की हालत काफी खराब लग रही थी। तब अमन ने तारा से कहा, तुम्हें क्या हुआ है और तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या हुआ? बोलो बेबी, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मेरा बच्चा इतना क्यों परेशान है? अमन ने बड़े प्यार से पूछा। अमन का साथ पाकर तारा ने उसे गले से लगा लिया। वो कितनी देर तक अमन को कसकर गले लगाए खड़ी रही, मानो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हो, और फिर कुछ देर बाद खुद को सामान्य करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको गले लगाने का दिल कर रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं, आप तो गिफ्ट ढूंढने के लिए चले गए, तो इसीलिए मैंने डरने का बहाना किया। तारा ने एक बेकार सा कारण दिया, लेकिन अमन ने उसकी बात पर कुछ खास यकीन नहीं किया। फिर बात बदलते हुए बोला, अच्छा तुम छोड़ो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ऐसा कहकर उसने एक बॉक्स उसके सामने खोला। उस बॉक्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत जड़ा हुआ पेंडेंट था गले का, जिसमें हीरे जगमगा रहे थे, जिसकी रोशनी तारा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी रोशनी में वो अपनी आंखें भी ढंग से नहीं खोल पा रही थी। तब अमन ने वो सेट तारा के गले में पहना दिया, और उसे गले में पहनाने के बाद वो शरारत करने से नहीं चूका। उसने तारा की गर्दन पर पीछे हल्का सा किस कर दिया, जिससे तारा के जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई, और फिर वो अमन की ओर देखने लगी और बोली, ये क्या है, और ये तो काफी महंगा लग रहा है, अगर इसे पहनकर मैं ऑफिस जाऊंगी तो सब लोगों को क्या जवाब दूंगी। तारा की बेतुकी बात सुनकर अमन हंसने लगा और बोला, मैंने कब कहा है कि तुम ये पहनकर ऑफिस जाओगी, ये तुम्हारा है, तुम इसे अपने पास रख सकती हो, और जरूरी नहीं है कि तुम इसे ऑफिस में पहनो, अगर हम कभी किसी बड़ी पार्टी में जाएंगे तब तुम इसे पहनकर चल सकती हो, डोंट वरी। अमन की बात सुनकर तारा मुस्कुराने लगी। उस वक्त उन दोनों के बीच बिल्कुल आम इंसानों की तरह बातचीत हो रही थी। तारा बोली, आखिर ये है क्या, आप मुझे ये तो बताइए। तब अमन ने कहा, ये इस दुनिया से लेकर दूसरी दुनिया तक के सबसे महंगे हीरों में से निकले हीरे का पेंडेंट है। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी शक्तियों के द्वारा मैंने इन्हें पाया है, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी खूबसूरत बीवी को ऐसा क्या दूं जो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरी बीवी की खूबसूरती को कुछ तो बराबरी करे। और तुम्हें पता है, इसके नग बहुत शक्तिशाली और बहुत एक्सपेंसिव हैं, इतने एक्सपेंसिव कि कोई इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अमन ने तारा को बहुत ही खूबसूरत और महंगा गिफ्ट दिया था। अमन अच्छी तरह जानता था इस सेट की कीमत लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, जिसका कोई अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता था। तब तारा ने कुछ देर वो सेट अपने गले में पहना, उसके बाद उसने उसे उतारकर वापस बॉक्स में रख दिया और बोली, मुझे इतनी महंगी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इतने प्यार से दिया तो मैं आपको मना नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ आप है और आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर तारा ने एक बार फिर मासूमियत से अमन को गले से लगा लिया, और अमन तारा की बात सुनकर कहीं ना कहीं अपने आप को काफी भाग्यशाली समझने लगा। वो सोचने लगा कि इंसानी रूप में उसे एक ऐसा फरिश्ता मिला है जिसे किसी भी चीज से, दौलत से, शोहरत से कोई लगाव नहीं है। उसे अगर किसी से लगाव है तो सिर्फ अपने पति से। अमन बहुत खुश था और देखते ही देखते अपनी खुशी को अपने होठों से बयां करना शुरू कर दिया, और उसने तारा की गर्दन के साथ साथ उसके होठों को भी जकड़ लिया और प्यार करना शुरू कर दिया। तारा भी उसके प्यार में खो गई थी और वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। और जैसे ही तारा और अमन एक हुए, अचानक अमन के बंगले में कंपन सा हुआ, जिसे अमन ने बहुत अच्छी तरह महसूस किया, और इस तरह का कंपन महसूस करके अमन काफी बेचैन और परेशान हो गया। उसने अपने ऊपर से तारा को हटाया और फिर बाथरूम में नहा धोकर जल्दी से कपड़े पहनकर पीछे वाले हॉल में अपनी मॉम के पास गया। तारा अमन को प्यार करने के बाद सो गई थी, क्योंकि वो काफी थक गई थी और उसे किसी भी तरह का कोई कंपन महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अमन को एहसास हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ हुआ है, क्योंकि उसके दो ताकतवर जिन्नों की मौत हुई थी तो अमन को उसका एहसास होना लाजमी था। जैसे ही अमन करिश्मा जी के पास गया, उसने देखा करिश्मा जी इधर उधर बेचैनी से टहल रही थीं। तब अमन ने करिश्मा जी से कहा, क्या हुआ मॉम, क्या आपने भी वही महसूस किया है जो मैंने महसूस किया है? अमन की बात सुनकर करिश्मा जी बोली, हाँ बेटा, जो तू समझ रहा है वही मैं समझ रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारे जिन्नों को खतरा है, कुछ न कुछ तो जरूर बुरा हुआ है। तब अमन ने अपनी मॉम से कहा, मॉम आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर वो बंगले में बने हुए एक लाल कमरे के अंदर चले गए और जल्द ही दोनों माँ बेटे ने वहाँ बैठकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन दोनों माँ बेटे की आत्माएं वहाँ से गायब हो चुकी थीं और गायब होकर सीधा उस खंडहर में पहुँच चुकी थीं। करिश्मा जी और अमन ने अपने अपने मंत्रों के द्वारा अपने जिस्म को बंगले में ही छोड़ दिया था और खुद उनकी आत्मा अब खंडहर में पहुंच चुकी थी। वहां जाकर उन्होंने अपने आसपास अपने जिन्नों को देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी दूर दूर तक उनके जिन दिखाई नहीं दिए। और जैसे ही करिश्मा जी उस कमरे में गईं, जिस कमरे में उन्होंने विक्रांत रंधावा यानी पिछले जन्म के राजा विक्रम सिंह की माँ को रखा था, जैसे ही उन्होंने उसे कमरा देखा, वो कमरा पूरी तरह से खाली था और वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था। और वो जो खंडहर वहाँ खड़े हुए थे वे भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे, केवल थोड़ा बहुत भाग ही खड़ा हुआ था। करिश्मा जी और अमन की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि उनकी रूह वहाँ पर थी, लेकिन वे सब कुछ अच्छी तरह से साफ साफ देख पा रहे थे। और तभी उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो सफ़ेद सफ़ेद कुछ राख पड़ी हुई थी। करिश्मा जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये राख क्या हो सकती है। उस राख को देखकर करिश्मा जी की आंखें भर आई थीं, क्योंकि वो समझ चुकी थीं कि उनके दो शक्तिशाली जिन्नों की जान जा चुकी है। और फिर जल्द ही करिश्मा जी और अमन की आत्मा वहां से गायब होकर वापस अपने जिस्म में आ गई थी। और जैसे ही करिश्मा जी की आत्मा उनके जिस्म में वापस आई, करिश्मा खड़ी होकर रोने लगी और अमन अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश करने लगा और बोला, आखिर मॉम ये सब क्या हुआ है? आखिर ये सब करने की किसकी हिम्मत हुई जो हमारे इतने ताकतवर जिन्नों को भी मार डाला? आखिर कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? अमन को रह रहकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया होगा। करिश्मा जी रोती रोती बोली, ये काम किसी और का नहीं बल्कि पिछले जन्म का जो राजा दुष्ट राजा था, राजा विक्रम सिंह, ये जरूर उसी का काम है। जैसे ही अमन ने ये सुना, उसकी हालत खराब होने लगी और वो हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगा और बोला, ये आप क्या कह रही हैं मॉम, राजा विक्रम सिंह? तब करिश्मा जी बोली, हाँ हाँ, राजा विक्रम सिंह, मुझे पूरा यकीन है उसी ने अपनी माँ को छुड़ाया होगा और उसी ने मेरे दो जिन्नों की जान ली होगी। तू तो अच्छी तरह से जानता है ना कि वे जिन कितने ताकतवर थे, और उसने एक ही झटके में उन दोनों की जान ले ली तो तू इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा सकता है कि वो कितना खतरनाक और शक्तिशाली होगा। ऐसा कहकर करिश्मा जी कांप सी गईं और बोलीं, बेटा अब तारा बेटी के जान को पूरी तरह से खतरा है। उस दुष्ट राजा विक्रम सिंह की नज़र शुरू से ही तारा बेटी पर है, और अब क्योंकि वो अपनी माँ को भी छुड़ा ले गया है तो ज़रूर वो अब तारा बेटी से मिलने की कोशिश करेगा और उसे अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि तारा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तू ये बात अच्छी तरह से जानता है। अब हमें तारा बेटी का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। उसे हम एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। और एक और बात, अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस दुष्ट दानव का मुकाबला कर पाएं। इसलिए तुम्हें अब तप करना होगा। जब तक तुम समाधि में कुछ दिनों के लिए तप नहीं करोगे, तब तक तुम्हें और शक्तियाँ नहीं मिल पाएंगी, और तुम्हें अब अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ज़रूर उस दानव ने पता लगा लिया होगा कि तारा कहाँ रहती है, और वो किसी भी पल तारा पर हमला कर सकता है। करिश्मा जी की बात सुनकर अमन को बहुत हैरानी हो रही थी। उसे रह रहकर अपनी बीवी यानी तारा की फ़िक्र सताने लगी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि वो राजा विक्रम सिंह कितना खतरनाक है, और उसकी माँ ने जो उसे उसका जन्म दिखाया था तो उसके अनुसार वो वहाँ सिर्फ तारा के लिए ही आया था, ये बात साबित हो चुकी थी। तब करिश्मा जी फिर बोली, बेटा मैंने तो सोचा था कि तारा बेटी इस बार काफ़ी ताकतवर होगी, लेकिन उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। आखिर है तो वो एक मामूली इंसान ही।